और चूंकि आपने इतनी घोर संकट की घड़ी में नमोकार मंत्र का स्मरण किया है, इसलिए मैंने आपकी रक्षा की है। मेरा काम ही है कि किसी भी धार्मिक जन पर आए हुए संकट को दूर करना। यदि संकट की घड़ियों में भी उसकी आराधना पक्की हो तो फिर उसने धन्य कुमार को, जो उसके वस्त्र थे पूरे पानी में भीग गए थे, उसने दिव्य वस्त्रों से और आभूषणों से अलंकृत कर दिया। वहीं पानी के नीचे ऐसा कुछ बना करके उसने धन्य कुमार को नए वस्त्र दिए, नए आभूषण पहना दिए। और उसके बाद फिर धन्य कुमार से निवेदन किया कि आपको जब तक विश्राम करना हो यहाँ बैठिए। तो धन्य कुमार बैठे रहे थोड़ी देर तक, क्योंकि वो जो घटना हुई थी उसके कारण थोड़ा बहुत तो अंदर हलचली थी। तो बैठने के बाद जब थोड़ी देर बाद मन शांत हो गया, तब धन्य कुमार ने बोला कि अब मुझे छोड़ दो। तब वो देव कहता है, जैसा आपका आदेश हो। तो एक सिंहासन के साथ उसको ऐसे पानी से बाहर निकालता है, पानी से बाहर निकालता है, और बाहर निकाल कर उस बावड़ी के तट पर व्यवस्थित पहुंचा देता है। और तब तक वो लोग, हो सकता है कि घड़ी दो घड़ी समय निकल गया हो इतनी देर में, वो लोग तो ये समझ कर कि काम तमाम हो गया, वहां से जा चुके थे उसके भाई। तो अब धन्य कुमार वहां पर बैठता, थोड़ी देर तक के बैठे बैठे मन में सोचता है कि भैया लोग तो चले गए, अब मैं क्या करूं। वो अगर घर गए होंगे तो मुझे न देख करके मां बड़ी दुखी होगी, मां रोएगी, इसलिए मुझे जल्दी से जाकर मां से मिल लेना चाहिए। ये सोच करके वो वहां से घर की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन फिर अपने वस्त्राभूषणों को देखता है तो बिल्कुल असाधारण उसके वस्त्राभूषण थे। और फिर उसको ख्याल आता है कि यदि आस पड़ोस के लोग दुश्मन हो तो फिर घर वाले एक होकर के उसका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन घर में ही यदि शत्रु हो तो ऐसे घर में क्या रहना। बस ऐसा सोच करके धन्य कुमार मन में ठान लेता है कि अब घर वापस नहीं जाना। और वो वहां से उस समय राजगृही नगरी के राजा श्रेणिक थे और बड़ी कीर्ति थी उनकी। और इसने, धन्य कुमार ने भी नाम सुना था कि अपने मगध देश के जो सम्राट हैं वो श्रेणिक राजा हैं, इसलिए चलो श्रेणिक राजा से मिलते हैं अपन जा करके, फिर आगे का भविष्य देखा जाएगा, जो होगा सो होगा देखा जाएगा, श्रेणिक राजा से जा करके मिलेंगे। तो वो राजगृही की तरफ निकल पड़ता है और रात को कहीं पर अपना समय व्यतीत करने के बाद देव ने उसको अंत में ये कहा था कि तुम कभी भी कहीं भी घबराना मत, कैसी भी परिस्थिति हो कभी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नमोकार मंत्र के प्रति है। और जिसके हृदय में नमोकार मंत्र है उसको कोई विपत्ति पराजित नहीं कर सकती, वो हर विपत्ति से पार निकल आता है, इसलिए तुम कभी चिंता मत करना। और नमोकार मंत्र की सच्ची आराधना करने वालों के तो देव भी रक्षक बन जाते हैं। इसलिए मैं तो यहां जल देवता था तो आपको जल से बचा करके बाहर निकल लाया, लेकिन कहीं भी चले जाओ वन देवता भी तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, नगर देवता भी तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, शासन देवता भी तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, तुम निश्चिंत रहना, बोले। तो धन्य कुमार को नमोकार मंत्र के प्रति और ज्यादा दृढ़ता आई थी, क्योंकि घटनाओं का असर पड़ता है जीवन पर। जब धन्य कुमार नमोकार मंत्र का आनंद पूर्वक स्मरण करता हुआ आगे बढ़ रहा था, तो आगे उसने जंगल में एक अजूबा देखा, आश्चर्य देखा। लेकिन उस जंगल को पार करने के पहले एक गांव मिला, और गांव के बाद उसको वो अजूबा देखने मिला, एक आश्चर्यकारी दृश्य। अब उस गांव के पास खेत थे, और उन खेतों में एक किसान हल चला रहा था। धन्य कुमार सोचते है, ये कौन सा खिलौना है, आज तक माँ ने कभी मुझे बताया नहीं। ये देखो ऐसे बैल आगे आगे चल रहे हैं, और वो पीछे कुछ और है, और उसमें जमीन में गड्ढे होते जा रहे हैं, और ये किसान ऐसे जेब से कुछ निकाल निकाल कर ऐसे डालता जा रहा है, ये कौन सा खेल है। किसानों के बारे में उसने सुना था, लेकिन ऐसी माँ कभी उसको छोड़ती नहीं थी कि जाकर देख लो कभी कहीं, बस वो अपने ही पास रखती थी, उसको पता नहीं था कि ये क्या है। तब फिर देखता रहा, तब अचानक किसान की दृष्टि पड़ गई उसके ऊपर। तो किसान पूछता है कि कौन हो भाई। वो कहता है कि मेरा नाम धन्य कुमार है, आप कौन है। तो बोले कि यहाँ पर मैं इस गांव का किसान हूँ, खेडूत कहते हैं आप गुजराती में, मैं यहाँ पर किसानी करता हूँ, और मेरा नाम कुटुंबी है, आओ बैठो ना। तो धन्य कुमार बैठ जाता है उसके साथ एक पेड़ के नीचे, और बैठ करके दोनों थोड़ी देर बातचीत करते हैं। वो पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो वो समझता है कि क्योंकि राजकुमार होगा, ऐसे वस्त्र थे उसके, दिव्य वस्त्र और आभूषण थे। तो फिर बोलता है कि राजा श्रेणिक के पास जा रहा हूँ। तब तो उसको और भी लगता है कि ये तो बिल्कुल कोई स्पेशल आदमी है। फिर बोलता है कि अच्छा मेरे साथ भोजन करोगे, मैं अभी भोजन लेकर के आता हूँ। धन्य कुमार को भूख लग रही थी, बोलता है कि हाओ करूँगा भोजन। वो चला जाता है, और जब जाता है तब तक धन्य कुमार को लगता है कि इसके खिलौने से मैं भी खेल करके देखता हूँ। और जैसे ही धन्य कुमार उस हल को उठा करके चलाना प्रारंभ करता है, वो जमीन में कहीं अटक जाता है, और धन्य कुमार उसको बड़ी मुश्किल से निकालता है, और वहां से एक घड़ा निकलता है, सिक्कों से भरा हुआ घड़ा। अब उस घड़े को देखकर धन्य कुमार घबरा जाता है, बोले कि ये क्या, मैंने कौन सा खेल खेल लिया, अब इसमें से ये आफत निकले। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी से उसको ढक दिया, हल को भी और बैलों को वैसे ही छोड़ दिया, और चुपचाप उस पेड़ के नीचे ऐसे बैठ गया जैसे कि कुछ किया ही ना हो। करते हैं ऐसे बच्चे, कुछ एकदम शांत बैठा रहा। फिर वो आया, भात और जो कुछ भी लाना था उसको लेकर के आया, दोनों ने मिलकर के शुद्ध भोजन किया, और उसके बाद धन्य कुमार जाने लगा। तब फिर कुटुंबी बोलता है कि हमें भूल तो नहीं जाओगे। धन्य कुमार बोला कि नहीं भूलेंगे हम, आपने हमें भोजन कराया था, हम याद रखेंगे। और जब वहां से निकलता है धन्य कुमार और ये हल चलाना प्रारंभ करता है, तो इसको वो मिल जाता है घड़ा। वो मन में विचार करता है कि आज तक इस खेत में खेती करते करते मुझे बरसों बीत गया, कई बार मैंने जमीन खोदी है, इसमें कभी ये घड़ा नहीं निकला, और न मेरे पिता के समय में ऐसा कुछ हुआ, और न दादा के समय ऐसा कुछ हुआ। ये निश्चित होता है कि इस संपदा को वो छोड़ करके गया होगा, मुझे जानकारी दिए बिना वो मेरे लिए ये छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर विचार आता है कि कितना उदार दिल है उसका, मतलब इतनी संपत्ति छोड़ करके जा रहा है मेरे लिए। अब धन्य कुमार तो कुछ और समझ करके वहां से निकल गया था, तो ये पीछा करता है उसका, और पीछा करते समय खूब आवाज लगाता है कि रुक जाओ धन्य कुमार, रुक जाओ। धन्य कुमार सोचता है कि अब फंस गया, इसने समझ लिया होगा कि मैंने हल चलाया है, अब ये कुछ ना कुछ बोलेगा, क्या करूं। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब पकड़ में आए गए हैं तो ठीक है, गलती स्वीकार करेंगे। जैसे वो धन्य कुमार को वापस लौटा करके लाता है, तब फिर वो धन्य कुमार की बहुत प्रशंसा करता हुआ वो घड़ा धन्य कुमार के हाथ में देता है, कहता है कि देखो ऐसा मत करो, हम मेहनत की कमाई करते हैं, हमारा समय निकल जाता है, हमारा गुजारा चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा आप ये मत करो, ये ले जाओ अपनी संपत्ति। धन्य कुमार बोलता है कि मेरी संपत्ति बिल्कुल नहीं, हे कुटुंबी ये मेरी संपत्ति नहीं है, तुम्हारी संपत्ति है। मैं खेल रहा था तुम्हारे उस खिलौने से, अब मैं सच सच बताता हूँ। बोले तुम जब खाना लाने गए ना, तो मैंने कभी ऐसा खिलौना नहीं देखा, मैं पहली बार खेलने लगा और फिर इसमें से जमीन के अंदर से ऐसा निकल आया। तो ये तुम्हारी संपत्ति है, तुम्हारी जमीन से निकली है, मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया, तुमने देखा भी था मेरा हाथ तो खाली थे। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये चीज निकली है, तुमने ही ला करके रखी होगी। धन्य कुमार मानने को तैयार ही नहीं था। तब फिर वो बोलता है कि नहीं, ये संपत्ति अगर मैं रखूंगा तो हमारे गांव के जो मुखिया है वो हमसे पूछेंगे कि कहां से लाए इतने धन, और वो हमें फिर चोर समझेंगे या कुछ भी करेंगे, हमें दंड देंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। तब फिर धन्य कुमार बोलता है कि चलो मुखिया के पास चलते हैं। तो दोनों मिलकर के मुखिया के पास जाते हैं और वो घड़ा रख देते हैं सामने और सारी घटना सुना देते हैं। मुखिया ऐसे देखता है, घड़े को देखता है और फिर धन्य कुमार को भी देखता है, उसके चेहरे को, उसके वस्त्राभूषणों को देखता है और फिर मन में विचार करता है कि ये झूठ तो बोल नहीं सकता, यानी इसकी जो बोली है इससे ऐसा नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि इतनी संपत्ति इसी के पुण्य में हो सकती है, इस किसान के पुण्य में कभी नहीं हो सकती। तब फिर राजा जो है वो पूरा घड़ा बोलते कि ठीक है तुम्हारा नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ के जो मुखिया हैं, गांव वाले हमें राजा मानते हैं, हम ये तुम्हें देते हैं। तो धन्य कुमार राजा की बात कैसे टाले, तो धन्य कुमार ऐसे अपने हाथों में ले लेता है उसको और फिर वो राजा से कहता है कि राजन आपने ये हमें दे दिया, हम ये घड़ा इस किसान को देते हैं। उसके किसान के हाथ में, कुटुंबी के हाथ में वो रख देते हैं। वो किसान इनके पैर छूता है और धन्य कुमार वहां से आगे रवाना हो जाता है। धन्य कुमार सोचता है कि अब ऐसे खेल नहीं खेलेंगे कभी, आगे निकल जाता। तब उसको जंगल में एक अजूबा दिखाई देता है। वो अजूबा क्या था कि जंगल में कुछ ऐसे जंगली जानवर, कुछ ऐसे प्राणी आपस में हिल मिल करके बड़े प्रेम से बर्तन कर रहे थे। मतलब इतने खूंखार प्राणी कि जो किसी को देख ले तो फिर जिंदा ना छोड़े। वो जानवर आपस में बड़े प्रेम से वहां पर बर्तन कर रहे थे। मतलब उनका बर्ताव वैसा नहीं लग रहा था, खूंखार और भयानक और भय से भरा हुआ, जैसे हिरण है और चीते भेड़िए वगैरह। ये एक दूसरे को देख करके एकदम वो तो पकड़ना चाहते हैं और ये भागना चाहते हैं, लेकिन वहां के वातावरण में उसको लगा कि यहाँ तो ये लोग सब एक साथ बड़े प्रेम से मिले हुए हैं। उसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने हमेशा यही सुना है कि ये खूंखार प्राणी होते हैं, खाते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं, तो ये शिकारी जानवर सामने शिकार है लेकिन फिर भी शिकार क्यों नहीं करते, क्या बात है। तो ऐसे थोड़ी देर तक के विचार करता रहता है और वो जानवर इसको भी देख लेता है धन्य कुमार को, लेकिन हमला नहीं करते। धन्य कुमार को लगता है कि जरूर कोई बात है यहाँ। फिर एक पेड़ की तरफ सांप को जाता हुआ देखता है, तो फिर थोड़ी दूर पीछे जाता है, देखता है कि सांप कहाँ जा रहा है। तो फिर घने वृक्षों के बीच में एक ऐसा स्थान था जहां वो देखता है कि वो सांप ऐसे जाकर के, एक मुनिराज बैठे हुए थे उनके शरीर पर से ऐसे चढ़ता हुआ, ऐसे थोड़ी देर रुकता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तब धन्य कुमार को लगता है कि ये गुरु की साधना का प्रभाव है कि उनके आसपास का वातावरण भी अहिंसा से भर गया है, यहां कोई किसी की हिंसा नहीं कर सकता। तो बड़ी भक्ति पूर्वक जाकर के धन्य कुमार विधिवत उनको नमस्कार करता है और नमस्कार करने के बाद उनके मुख से धर्म का उपदेश सुनता है। धर्म के उपदेश में उन्होंने बताया कि किस प्रकार मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आजीविका कैसी होनी चाहिए, और सारी बातें बताई कौन सी चीजें अनुचित है कौन सी चीजें उचित है, गृहस्थ जीवन में क्या कर्तव्य होता है। उस सारा उपदेश सुनने के बाद धन्य कुमार को लगा कि ये गुरुजी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तब उसके मन में जो शंकाएं उठ रही थी, उसने वहां पर प्रश्न पूछा कि गुरुवर, आप तो सब कुछ जानते हैं, क्या कारण है कि मेरे भाई मेरे शत्रु हैं और मेरी माँ मुझे प्राणों से भी अधिक चाहती है, और क्या कारण है कि मैं जहां जाता हूं वहां कोई न कोई संपत्ति प्राप्त हो जाती है और संकट आने पर भी मेरी रक्षा हो जाती है। माँ कहती थी कि जिसने पिछले जन्म में पुण्य किया है उसको इस जन्म में सब कुछ प्राप्त होता रहता है, मैंने कौन सा पुण्य किया है। तब गुरु महाराज अवधि ज्ञान से उसके जन्म जन्मांतरों को जानकर कहते हैं कि हे धन्य कुमार, अब ध्यान से सुन, तूने पूर्व जन्मों में क्या किया है वो मैं बताता हूं, अब क्या बताते हैं इसको फिर देखेंगे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचतन, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अग हरण जगत में, और न शरणाहितकारी, जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री अरिहंतों को, नमस्कार श्री सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, ओम शांति। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा, बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।